نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوسرے پارے کا پہلا سبق شروع کریں گے. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے بہت ہی قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھنی پڑیں گی تاکہ آپ اس پورے سبق کو سمجھ سکیں. بہت ان یوزول سبق ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جب تک ہم لوگوں نے قرآن پاک کا باقاعدہ کوئی علم نہیں سیکھا ہوتا تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتی. تو میں جملوں میں اس طرح بولنا چاہوں گی کہ بالکل آپ لوگ اپنے ذہن کے مطابق اس کو لے کر چل سکیں اور لکھیں. جو بات نہ لکھ سکے نہ سمجھ آ سکے کوئی بات نہیں, لیکن اس کی جگہ چھوڑ دیں, دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں اور اپنے آپ کو بالکل اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے کلام کی وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو آج تک کی زندگی میں شاید ہم نے نہیں سیکھی تھی, تو ہمارے ذہنوں کو کھول دیں. ترتیب کچھ اس طرح سے ہے آج کے سبق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے. ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, پیچھے سے بھی سن چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے شروع سے لے کر, ان سب کا قبلہ بیت اللہ تھا. دوسرا جملہ نوٹ کیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا, خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے سے اس گھر کو بنا دیا گیا تھا اور ہر دور کے نبی نے اس کے بارے میں بات کی, یہاں کا حج کیا گیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر آتا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی. اس کے بعد ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا جب, اور اپنی بس یاداشت کے لیے ہلکا سا لکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد کا دور تھا. اس وقت بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. گویا کہ ابھی تک جو بات کہی گئی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بیت اللہ شروع سے موجود تھا, بیت المقدس اس کے بعد بنا. یہ بات سورۃ آل عمران کی ایک آیت سے بھی ہمیں ملے گی, وہاں جا کے اس کے اوپر بات ہو جائے گی. اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ مکہ میں تھے, خانہ کعبہ مکہ میں ہی تھا, آپ پچھلے دور کے انبیاء کی سنت کے مطابق بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اگر آپ بیت اللہ اور بیت المقدس کی ڈائریکشن دیکھیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اگر مکہ میں بیت اللہ کی جنوبی سائڈ کی طرف اگر منہ کر کے کوئی کھڑا ہو تو اس کی سیدھ میں پہلے بیت اللہ آتا ہے, پھر اس کے بعد بیت المقدس آتا ہے. اگر میری اس بات کو آپ امیجینیٹ کرنا چاہیں تو میں دوبارہ آپ کو یہاں اشارے سے سمجھا دیتی ہوں کہ یہ میرے لیفٹ سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں مکہ ہے, یہ جہاں پہ سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ ہے, اور یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ اگر آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ بیت المقدس ہے. ایک ہی سیدھ ہے. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں, کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے بائی روڈ اگر آپ جائیں, تو جب مکہ سے آپ موو کرتے ہیں مدینہ کی طرف, وہی روڈ اگر آپ سیدھی چلتے جائیں تو وہ بیت المقدس یعنی ملک شام آ جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو آٹومیٹیکلی آپ کا رخ دونوں طرف ہو جاتا تھا. شروع سے لے کے لوگ بیت اللہ ہی کی طرف نمازیں پڑھتے تھے, لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو یہود نے, جیسا کہ تبدیلی کا شوق ان کو شروع سے ہی تھا, انہوں نے اس کے معاملے میں کیا کیا کہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیا. ٹھیک ہے, اس سے پھر وہی ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے ان کی سنت یہ چلتی گئی کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے گئے, اور یہود صرف اس میں آپ کہہ لیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہی کام کرتے رہے جو کہ کرتے تھے. مکہ میں رہتے ہوئے کوئی ایشو نہیں اٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, اب ذرا تھوڑا سا اس نقشے کو دیکھیے, اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں, ایک سیاسی پہلو ہے, ایک اخلاقی ہے, ایک مذہبی ہے. مدینہ میں یہود کو مذہبی اجارہ داری حاصل تھی, مناپلی تھی, یعنی مدینہ میں چونکہ یہود एज अ रिलीजियस लीडर मारूफ थे, और वो अपने उसी पिछले रिवायती दीन पर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके इबादत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो अब आपके सामने एक इश्यू था। अगर आप बैतुल्ला की तरफ मुंह करते हैं, आप अब देखिए ये मेरा स्टेज है जिसको आप मदीना कहते हैं, ठीक है, मदीना की सूरत में आप इसको अगर महसूस करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बैतुल्ला की तरफ मुंह करें तो जाहिर है कि बैतुल मक़दस को पीछा होता था, और अगर आप उधर मुंह करें तो बैतुल्ला पीछे चला जाता था। अल्लाह सुबहाना ताला ने वही खफी के ज़रिए, उसका जिक्र ना तो कुरान में ना हदीस में, ये वही की वो किस्म होती है कि अल्लाह ताला नबी के दिल में बात डाल देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ें। मकासिद क्या थे इसके? नंबर एक, मदीना में रहने वाले लोग चूंकि यहूद के ज़ेर असर थे और उनको पहले से बैतुल मक़दस ही की तरफ मुंह करने की आदत थी, तो अल्लाह के नबी को एकदम फौरी चेंज लाने का हुक्म नहीं दिया गया। वक्त और माहौल के रिवाज को सामने रखते हुए लोगों की जहन साजी की जाने लगी। पीछे आपने पढ़ा, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बि खैरे मिनहा, वहाँ हमने दीन का एक मिजाज सीखा था, ग्रेजुअलिटी। जब भी किसी बंदे को आप अल्लाह का बंदा बनाना चाहते हैं ना, नफ्स के बंदे से हटाकर, तो उसको थोड़ी सी मोहलत देनी चाहिए, क्योंकि बैतुल्ला भी अल्लाह का है और बैतुल मक़दस भी अल्लाह का है। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ये दोनों बातें तो अल्लाह की हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि जब तकरीबन 16 से 17 महीने, तकरीबन समझ लीजिए कि 1.5 साल के करीब, अल्लाह के नबी ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी, तो यहूद को थोड़ा सा सुकून हो गया। कैसे? ये दूसरी हिकमत थी कि यहूद को अल्लाह के नबी का एकदम दुश्मन नहीं करार दे दिया गया। अगर आते ही आप सोचिए, लेट्स सी, अगर आप मिसाल दें कि कहीं भी दीन का काम नया शुरू हो और आने वाला कह दे जो कोई कर रहे हैं वो सब गलत हैं, उन सब को छोड़ दो, उनकी बात ना सुनो, वो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ हमारी बात सुनो, तो आने वाले तो सोचेंगे कि हमें एक अच्छी बात मिल गई, लेकिन जो लोग पहले से दीन की बात कर रहे होते हैं ना, वो कॉन्शियस हो जाएंगे ये सब हमारे खिलाफ़ बातें हो रही हैं, ये हमसे लोगों को खिलाफ कर रहे हैं, राइट? तो इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, टकराव की पॉलिसी नहीं इस्लाम चाहता। आपको साफ पता है ना लोग गलत काम कर रहे हैं, लेट देम डू, करने दें, आप सही काम शुरू कर दें। जब आपके पास खैर होगी ना, तो जिनके दिलों में खैर होगी, फितरत पे होंगे, तासुब नहीं होगा, एक एक करके खुद ब खुद वो उस दावत की सच्चाई को कबूल करते जाएंगे, असर से निकल कर सच की तरफ आते जाएंगे। यही मिजाज इधर था। यहूद को दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे अल्लाह के नबी, क्योंकि फिर उनको मुसलमानों के खिलाफ बातें करने का मौका मिलता, और मुसलमान जिनके भी पांव नहीं जमे हुए थे तो उस मुल्क में, शहर में, तो अगर आते ही लड़ाई, टकराव, मार कुशाई, आज फसादात, हिंदू मुस्लिम फसादात, शिया सुन्नी झगड़े, तो आप बताइए कि दीन का काम कैसे होता? ये वो सुन्नत है जो आज मतरूक है मुसलमानों में। आज के मुसलमानों में अग्रेशन इतना है, जज्बाती इतने हो गए, हर वक्त मार कुटाई और गुस्से में मुसलमान काफिरों से भी लड़ते हैं और मुसलमान मुसलमानों से भी लड़ते हैं, फिरकों के नाम पे भी लड़ते हैं। जिनके पास हक है, वो हक होने के बावजूद हक का इजहार ठीक तरह नहीं करते। नतीजा क्या आता है कि जू ही कोई एक शख्स बात करना शुरू करता है, तो दूसरे लोगों के खिलाफ बात शुरू करता है। तो अल्लाह के नबी को यहाँ बताया गया 16-17 महीने के दौरान क्या हुआ कि नंबर एक, लोगों ने आपको इतना ज्यादा सोचना छोड़ दिया। जाहरी बात है कि यूज्ड हो गए, नई चीज़ होती है तो हर तरफ शोर मचता है ना, ये होने लगा, वो हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कॉन्शियस होगा। कुछ दिन, महीने, हफ्ते ख़त्म होते हैं तो उसके बाद एवरीथिंग, जिसको कहना चाहिए कि नॉर्मल पे आ जाती है। जब ये मामला भी हो गया, दूसरी तरफ मुसलमानों के पांव जम गए, उनके साथ कुछ ऐसे हमख्याल लोग आ गए, और उस वक़्त महसूस ये हुआ कि अब तब्दीली का वक्त आ गया। अब ये जो 16-17 महीने थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरी तौर पे मक्का से प्यार करते थे। आप और मैं भी तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं ना, चाहे उसकी सड़कें टूटी हुई हैं। हम दुनिया में चांद पे भी पहुंच जाएंगे तो हम छुट्टियां मनाने पाकिस्तान के किसी शहर या गांव में जाएंगे ना, ये फितरी बात है। तो मक्का वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जाए वलादत थी, दूसरा अल्लाह का घर, तीसरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी कि अल्लाह ताला लोगों के दिल इस तरफ झुक। तो अल्लाह के नबी खुश नहीं थे। अब यहाँ से आपको मुकाम समझ आएगा, नबी की मर्जी के खिलाफ, नबी की चॉइस के खिलाफ 1.5 साल तक अल्लाह ताला ने नबी को इबादत बैतुल मक़दस की तरफ करवाई। की कि ना की आपने? शोर मचाया, चूचा की। कोई अल्लाह के नबी ने धौंस दी, धांधली दी, जिसको आज नातों की सूरत में आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, नाउज़ुबिल्ला। और अल्लाह के कहने से क्या होता है, जो चाहता है वो नबी करता है। नहीं, ये था अल्लाह के नबी की बात जो अल्लाह ताला ने खुद कही कि आमन और रसूल। रसूल तो खुद सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को मानता है, लिहाजा आप दिल की मिलान के खिलाफ होने के बावजूद नमाज बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते रहे, दुआ करते थे, दिल से ख्वाहिश थी आपकी कि दोबारा बैतुल्लाह की तरफ किबला हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक एंगल पे और चलिए, वो क्या है कि बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना उस दौर के लोगों के लिए मदीना में रहते हुए बहुत आसान था। बाप दादा के तरीके से, वक्त से वो यही देखते आ रहे थे यहूद की वजह से। जब उनको बैतुल्लाह की तरफ अब हुक्म हो रहा है, तो अब उनके अंदर एक किस्म का एक मलाल और शक पैदा होगा कि हम अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़कर अब इस नबी के कहने पे एक और तरीके पे क्यों नमाज़ पढ़ने लग जाए। ये बिल्कुल वही चेंज है जो कुरान पढ़ने के बाद अक्सर लोगों की ज़िंदगी में आता है। हम सब एक ख़ास पेट दीन पे चल रहे होते हैं बचपन से, नमाज़ पढ़ने से लेकर वज़ू करने से लेकर शादी ब्याह के रस्मों पे। जब कोई कुरान पढ़ने आता है ना, तो सबसे पहली यही तब्दीलियाँ लोगों को चुभती हैं। क्या हमारे बड़े गलत है? क्या उनको समझ नहीं थी? क्या फिर इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं तो वो भी ठीक नहीं? जब भी ये मौका आता है ना इंसान के जहन में, तो दो किस्म के गिरोह बन जाते हैं। एक खास मजहबी जहनीयत के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाहरी बातों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मसलन जिसको आज के दौर में आप कह लें फी जमाना के नमाज में हाथ कहाँ बांधे, नमाज में रफुल जदैन करें कि ना करें, पांव जोड़ें कि ना जोड़ें, औरत ऊंचा सजदा करे कि नीचा करे, ये पेट जुमले आपने सुने होंगे। इमाम के पीछे फातिहा ऊंची आवाज से पढ़ी जाए कि नीची पढ़ी जाए, ये जाहरी अमाल है जिनकी बहुत अहमियत है, लेकिन ये असल नहीं है। जब लोग खास तौर पे इस सोच के हामिल हो जाएं कि इबादत के जाहरी रिचुअल पे इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई किबले का इधर की बजाय जरा सा इधर मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू हो जाए ना, तो सारे शोर मचा देंगे। हाय किबला ठीक नहीं, ये नहीं पढ़ा, तुम्हारी हुई नहीं, कोई कहता है दोहराओ, कोई कहता है कफारा दो। लेकिन इसके बरक्स जो आमाल की रूह है वो खाली होती है। नमाज में कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हु केयर, कितना खशियत आई, कितना इखलास आया, कितना सिबगत अल्लाह आया, ये उनको नहीं पता होता। नतीजा क्या होता है कि फिर दीन जाहरी रस्मों का एक मजमुआ बन जाता है। जब कोई दिन आया लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, हज जाता है तो हज कर आते हैं, रमज़ान आता है तो रमज़ान रख लेते हैं, लेकिन उस इबादत का जो अंदर तबीयत पे असर आना चाहिए ना, वो नहीं आता। अल्लाह ताला किबले की तब्दीली के ज़रिए ये सोच ख़त्म करना चाहते थे। मक्का से जो लोग हिजरत करके आए थे, अब ये इसी के साथ एक डिफरेंट एंगल है, मक्का से हिजरत की सहाबाए कराम ने, कौन सी हिजरत थी? जिस्मानी हिजरत थी ना, घर छोड़े, माल छोड़े, औलादें छोड़ दी, उनका टेस्ट क्लियर था, 100/100 मार्क्स लेके वो सक्सेसफुल थे। क्योंकि जब एक बंदा अल्लाह के लिए घर छोड़ दे तो और बताएं क्या रह गया पीछे। ठीक है, अब इम्तिहान था उन लोगों का जो मदीना में आने के बाद मुस्लिम हुए थे, जिसको आप अंसार कहते हैं। एक तो अंसार जो पहले से अल्लाह के नबी के मदीना में आने से पहले मुस्लिम हो चुके थे, उन्होंने तो अपने घर बार खोल के इसका सबूत दे दिया था कि कोई बात नहीं, पूरा घर हमारा था, आजा, अब अगर एक महाजिर का हो गया तो नो प्रॉब्लम, बीवियां मेरी चार थी, एक को छोड़ दिया, अगर महाजिर को मिल गई वो तो इस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर हो गए, वो महाजिर बन गए या अंसार बन गए। ये किस्सा हम सूरत अनफाल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह ने इनके लिए आसमान से सर्टिफिकेट दिए हैं कि इनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। एक ने घर छोड़ा, दूसरे ने अपना घर खोला, वो भी पास थे। असल मसला था उन लोगों का जो मदीना में आने के बाद से इस अरसे के दौरान मुसलमान हुए। अभी इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल टेस्ट। इन्होंने अल्लाह के नबी की जुबान से इल्म सीखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके तकाजे, लेकिन प्रैक्टिकल चोट नहीं पड़ी। बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह ताला इनका टेस्ट लेना चाहते थे कि अगर मैं इनको कोई एक ऐसा हुक्म दूं कि जो इनकी तबीयतों के खिलाफ और इनके पुराने बचपन से तरीके के खिलाफ है, तो क्या ये उसको मानते कि नहीं मानते? तो इसलिए हुक्म अब आने वाला था कि अब बैतुल मक़दस से वापस बैतुल्ला पे आएगा, तो तो भला देखते हैं कि ये क्या करते हैं। बात बात है। तो ये किबले की तब्दीली का हुक्म न्यू मुस्लिम्स का एक टेस्ट था कि क्या अल्लाह के हुक्म पर बचपन से जिस तरफ मुंह करके इबादत करते करा रहे थे, क्या ये उससे अपने आप को दूर करते हैं कि नहीं करते। इतनी बात समझ आ गई है। इसका थोड़ा सा एक सियासी पहलू भी समझ लें। ये सारी बातें आज के सबक में आनी है, लेकिन आपको मैं शुरू में इसलिए दे रही हूँ कि सबक का खुलासा हो जाए, जो फिर बाद में बात को आसान कर देता है। और वो क्या है कि यहूद क्या सोचते थे कि हम लीडर हैं। मदीना के वो बेताज बादशाह थे मुसलमानों के आने से पहले। शुरू में जब मुसलमान 16-17 महीने तक उधर ही नमाज पढ़ते रहे जहां यहूद पढ़ते थे, तो उनकी अना को तस्कीन मिली, ईगो को सुकून मिला कि कोई बात नहीं, आज इन्होंने हमारे किबले की तरफ मुंह किया, कल ये हमारा दीन भी अख्तियार कर लेंगे। ठीक है, अब जब थोड़ा सा उनको अंदर से ये सुकून इत्मीनान मिल गया, अब जब वापस उनको बैतुल्ला की तरफ किया जाना था, तो यहूद को बहुत चोट पड़नी थी। कह रहे ये क्या हुआ, ये तो ग्रुप बन गए, ओ इनको तो इतनी तरक्की मिल गई, ओ हो, जो कल तक हमारे हाथ में था, जो साथी थे, लोग थे, वो इनके पास चले गए। तो इस पे यहूद की तरफ से एक बहुत बड़ा शोशा उठना था, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ का सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासी, ए नबी ज़रा तसल्ली रखिए, अन करीब बहुत बड़ा आपके खिलाफ प्रोपेगंडा होगा। बात बात है। 2 रुकू तक आप देखेंगे ये मजमून चलेगा, और पीछे से आप देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबक के नाते से 2 रुकू से ज़हनी तौर पे खाना काबा की बातें शुरू हो चुकी है ना पिछले पारे में। ये रब्त है दोनों पारों का, कि दूसरे पारे के आखिरी 2 रुकुओं में इब्राहीम का जिक्र, उनकी कुर्बानियों का जिक्र, बैतुल्ला का बनाना, इस्माइल और इब्राहीम का आपस में मिल के बनाना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला तब्दीली ला रहे हैं, और तब्दीली लाते लाते इस तरह से अब हालात बनते जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ था इसका। आयतों के साथ आपको लेके चलती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी तरफ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि अल्लाह सुबहाना ताला की सुन्नत क्या है, कि किसी काम के होने से पहले ही लोगों को उसके लिए तैयार कर दिया जाए, ताकि जब वो काम पड़े तो लोग घबरा कर उस काम को करना छोड़ ना दें। ठीक है, ये थी एक तमहीद।